योएल की पुस्तक और लाओदीकियन सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया संख्या 30।
संख्या 30।
मत्ती की पुस्तक में मसीही परिपूर्णताओं में अंत समय का मार्ग चिन्ह, संदेश के औपचारिक रूप से स्थापित किए जाने का मार्ग चिन्ह, 9:11 के मार्ग चिन्ह के दो साक्षी सम्मिलित हैं, एक लौदीकिया के लिए आंतरिक संदेश का साक्षी और दूसरा इस्लाम के आतंकवाद के बाह्य संदेश का। ये उपयुक्त है कि 9:11 के मार्ग चिन्ह का प्रतिनिधित्व मत्ती में 12 मसीही परिपूर्णताओं में से दो के द्वारा किया गया है, क्योंकि 9:11 में दूसरे स्वर्गदूत का संदेश सम्मिलित है जहां सदैव द्विगुणन होता है। 18 जुलाई 2020 की मृत्यु 5वां मार्ग चिन्ह थी जिस पर हमने विचार किया, और फिर जुलाई 2023 में जंगल में पुकारने वाला स्वर 6ठा था, और 2024 का पुनरुत्थान 7वां था। 8वीं मसीही परिपूर्णता मध्य रात्रि की पुकार है।
8वां मसीहाई मार्ग चिन्ह आधी रात की पुकार है।
ये सब इसलिए हुआ कि जो भूविष्ट वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर और एक बछेड़े पर जो गधे का बच्चा है सवार है। मत्ती 21:4-5।
पूर्वानुमान।
अत्यंत आनंद कर हे सियोन की बेटी, जय जयकार कर हे यरूशलेम की बेटी, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो धर्मी है और उद्धार लिए हुए है, नम्र है और गधे पर और गधे के बच्चे अर्थात बछेड़े पर सवार है। जकरिया 9:5।
500 वर्ष पूर्व प्रभु ने नबी जकरिया के द्वारा ये घोषित किया था, हे सियोन की बेटी अत्यंत आनंद कर, हे यरूशलेम की बेटी जय जयकार कर, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो धर्मी है और उद्धार लिए हुए है, दीन है और गधे पर अर्थात गधे के बच्चे पर सवार है। जकरिया 9:9। यदि चेलों ने समझ लिया होता कि मसीह न्याय और मृत्यु के लिए जा रहे हैं तो वे इस भविष्यवाणी को पूरा नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार मिलर और उनके सहयोगियों ने भविष्यवाणी को पूरा किया और ऐसा संदेश दिया जिसकी पूर्व सूचना प्रेरणा ने दी थी कि वो संसार को दिया जाएगा, परंतु वे वो संदेश नहीं दे सकते थे यदि वे उन भविष्यवाणियों को पूरी तरह समझ लेते जो उनकी निराशा की ओर संकेत करती थी और प्रभु के आने से पहले सब जातियों में प्रचार किए जाने के लिए एक अन्य संदेश प्रस्तुत करती थी। प्रथम और द्वितीय स्वर्गदूतों के संदेश उचित समय पर दिए गए और उन्होंने वो कार्य पूरा किया जिसे परमेश्वर ने उनके द्वारा पूरा करने के लिए ठहराया था। महान विवाद 10%।
परमेश्वर के भविष्यवाणी संबंधी वचन की गलत समझ मसीह के विजयी प्रवेश के इतिहास से जुड़ी हुई थी और 1894 में आधी रात की पुकार संदेश की घोषणा के समानांतर इतिहास से भी जुड़ी हुई थी। 144,000 से अपेक्षा की जाती है कि वे उनकी निराशा की ओर संकेत करने वाली भविष्यवाणियां को समझें। प्रकाशित वाक्य 10 में यूहन्ना को पहले से बताया गया था कि छोटी पुस्तक का वो संदेश जो उसके मुंह में मीठा होने वाला था कड़वा हो जाएगा।
भविष्य के लिए हमें किसी बात से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है सिवाय इसके कि हम उस मार्ग को भूल जाएं जिसके द्वारा प्रभु ने हमारी अगुवाई की है और हमारी अतीत की इतिहास यात्रा में उसकी शिक्षा को। लाइफ स्केचेस 192।
अतीत में प्रभु का मार्गदर्शन अन्य ईश्वरीय व्यवस्था के कार्यों के साथ इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि उसके हाथ ने गणनाओं में हुई एक गलती को ढक दिया, क्योंकि मिलरवादियों के लिए अपनी निराशा को पहले से समझ लेना अच्छा नहीं था, ठीक वैसे ही जैसे शिष्यों के लिए क्रूस पर अपनी निराशा के सभी पहलुओं को समझ लेना अच्छा नहीं था। परंतु आधी रात की पुकार की उद्घोषणा के इतिहास को उसी प्रकाश के रूप में पहचाना गया है जो स्वर्ग की ओर ले जाता है, और इसका उल्लेख एलन वाइट के सर्वप्रथम दर्शन में है। 144,000 को शिष्यों और मिलरवादियों की निराशाओं को समझना होगा, उस प्रकाश को अस्वीकार करना मार्ग से गिर पड़ना है।
मार्ग के आरंभ में उनके पीछे एक उज्ज्वल प्रकाश स्थापित किया गया था जिसके विषय में एक स्वर्गदूत ने मुझे बताया कि वो मध्य रात्रि की पुकार थी। ये प्रकाश समस्त मार्ग पर चमकता रहा और उनके पांवों के लिए ज्योति देता रहा ताकि वे ठोकर न खाएं। यदि वे अपनी आंखें यीशु पर जो उनके बिल्कुल सामने था और उन्हें नगर की ओर ले जा रहा था टिकाए रखते तो वे सुरक्षित रहते, परंतु जल्द ही कुछ थक गए और कहने लगे कि नगर बहुत दूर है और वे अपेक्षा करते थे कि वे इससे पहले ही उसमें प्रवेश कर चुके होते। तब यीशु अपनी महिमामय दाहिनी भुजा उठाकर उन्हें प्रोत्साहित करता और उसकी भुजा से एक प्रकाश निकलता जो एडवेंट दल के ऊपर लहराता और वे पुकार उठते, हल्लेलुया। कुछ अन्य ने उतावलेपन में अपने पीछे की ज्योति का इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें इतनी दूर तक ले जाने वाला परमेश्वर नहीं था। उनके पीछे की ज्योति बुझ गई, उनके पांव पूर्ण अंधकार में पड़ गए और वे ठोकर खाकर लक्ष्य और यीशु दोनों को दृष्टि से खो बैठे और मार्ग से गिरकर नीचे स्थित अंधकारमय और दुष्ट संसार में जा पड़े। एलन जी वाइट के ईसाई अनुभव और शिक्षाएं 57।
आठवां मार्ग चिन्हक मध्य रात्रि की पुकार है, जिसका प्रतिरूप मसीह का यरूशलेम में विजयी प्रवेश है।
आधी रात की पुकार तर्कों के सहारे इतनी नहीं फैली, यद्यपि पवित्र शास्त्र के प्रमाण स्पष्ट और निर्णायक थे। इसके साथ एक ऐसी प्रेरक शक्ति भी थी जो आत्मा को हिला देती थी। न कोई शंका थी, न कोई सवाल। मसीह के यरूशलेम में विजयी प्रवेश के अवसर पर पर्व मनाने के लिए देश के कोने कोने से एकत्र हुए लोग जैतून पर्वत पर उमड़ पड़े, और जब वे उस भीड़ में शामिल हुए जो यीशु को घेरे हुए साथ चल रही थी, तो वे उस क्षण की प्रेरणा से भर उठे और इस जयघोष को और ऊंचा किया, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, मत्ती 21:9। इसी प्रकार एडवेंटिस्ट सभाओं में उमड़े अविश्वासी, कुछ जिज्ञासावश, कुछ मात्र उपहास करने के लिए, ने भी इस संदेश के साथ उपस्थित विश्वासप्रद शक्ति को महसूस किया, देखो दूल्हा आ रहा है। स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी Volume 4 Tephiendus।
अंतिम दिनों में बुद्धिमान कुआरी होना भविष्यवाणी की अनिवार्यता के अनुसार यह अनिवार्य बनाता है कि वे बुद्धिमान कुंवारियां एक निराशा सहें जो बदले में उस दृष्टांत के विलंब के समय का आरंभ करती है। विलंब के समय का अनुभव किए बिना आप न तो बुद्धिमान कुंवारी है और न ही मूर्ख कुंवारी।
मत्ती 25 की 10 कुंवारियों का दृष्टांत भी एडवेंटिस्ट लोगों के अनुभव को चित्रित करता है। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 393।
किसी भी स्थिति में अंतिम दिनों की बुद्धिमान कुंवारियों को 19 अप्रैल 1844 जैसी निराशा का अनुभव अवश्य करना होगा, क्योंकि उस दृष्टांत का अनुभव वही अनुभव है जो 144,000 का है, जिन्हें यूहन्ना प्रकाशित वाक्य पाक्य में कुंवारों के रूप में पहचानता है।
ये वे हैं जिन्होंने स्त्रियों के साथ अपने आप को अशुद्ध नहीं किया क्योंकि वे कुंवारे हैं। ये वे हैं जो जहां कहीं मेमना जाता है उसके पीछे पीछे चलते हैं। ये मनुष्यों में से छुड़ाए गए हैं और ये परमेश्वर और मेमने के लिए प्रथम फल है। प्रकाशित वाक्य 14:4।
मसीह के कितने दृष्टांत ऐसे हैं जिन्हें सीधे और विशेष रूप से अक्षरशः पूरा हुआ माना गया है। हर दृष्टांत अक्षरशः पूरा होगा, लेकिन 10 कुवारियों का दृष्टांत विशेष रूप से इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि वो अतीत में और भविष्य में अक्षरशः पूरा हुआ और होगा। इसकी तुलना तीसरे स्वर्गदूत से की गई है जो 1844 से आगे वर्तमान सत्य बना रहेगा जब तक मिखाएल उठ खड़ा न हो जाए और मानव अनुग्रह काल समाप्त न हो जाए।
मुझे प्रायः 10 कुंवारियों के दृष्टांत की ओर संकेत किया जाता है, जिनमें से 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख। ये दृष्टांत अक्षरशः पूरा हुआ है और होगा, क्योंकि इसका इस समय के लिए विशेष अनुप्रयोग है, और तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के समान ये पूरा हुआ है और समय के अंत तक वर्तमान सत्य बना रहेगा। रिव्यू एंड हेरल्ड August 1890।
समय के अंत तक 10 कुमारियों का दृष्टांत वर्तमान सत्य है और आधी रात की पुकार फिर से अक्षरशः पूरी होगी।
एक संसार है जो दुष्टता में, छल और भ्रम में, यहाँ तक कि मृत्यु की छाया में पड़ा हुआ है, सोया हुआ, सोया हुआ। कौन है जो उन्हें जगाने के लिए आत्मा की व्यथा अनुभव कर रहे हैं? कौन सी वाणी उन तक पहुँच सकती है? मेरा मन भविष्य की ओर ले जाया गया जब वो संकेत दिया जाएगा, देखो दूल्हा आता है, उसके स्वागत के लिए बाहर निकलो। परंतु कुछ जन अपने दीपकों की पुनः पूर्ति के लिए तेल प्राप्त करने में विलम्ब कर चुके होंगे, और तब वे बहुत देर से ये पाएंगे कि चरित्र जिसका प्रतिनिधित्व तेल करता है हस्तांतरणीय नहीं है। रिव्यू एंड हेरल्ड February 11, 1869।
144,000 के आंदोलन में क्षितिज पर अगला मील का पत्थर मध्य रात्रि की पुकार है, उस मील के पत्थर के साथ वो उत्पीड़न आता है जो रविवार के कानून से पहले ही विश्वासियों के विरुद्ध शुरू होता है। वो उत्पीड़न बाहरी भी है और आंतरिक भी, और आंतरिक उत्पीड़न में दो विशिष्ट प्रतीक शामिल हैं। उन प्रतीकों में से एक यहूदा है और दूसरा सन्हेद्रिन।
नोवा मसीहाई मार्ग चिन्ह 30 चांदी के सिक्कों के बदले किया गया विश्वासघात है।
तब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता द्वारा कहा गया ये वचन पूरा हुआ। उन्होंने चांदी के 30 सिक्के लिए, उसका मोल जिसकी कीमत आंकी गई थी, जिसे इसराइल की संतानों ने आंका था, और उन्हें कुम्हार के खेत के लिए दे दिया, जैसा प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी। मत्ती 27:9-10।
पूर्वानुमान।
और मैंने उनसे कहा, यदि तुम उचित समझो तो मेरी कीमत दे दो, और यदि नहीं तो रहने दो। तब उन्होंने मेरी कीमत के लिए चांदी के 30 टुकड़े तौले। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उसे कुम्हार को दे डाल, क्या ही अच्छी कीमत है जिस पर उन्होंने मेरा मूल्य आंका। तब मैंने चांदी के 30 टुकड़े लिए और यहोवा के भवन में उन्हें कुम्हार को फेंक दिया। जकर्याह 11:12-13।
यहूदा का विश्वासघात झूठे याजकों के विश्वासघात का प्रतीक है, क्योंकि संख्या 30 याजकों की आयु को दर्शाती है। वे याजक जो लेवी भी है, वाचा के दूत द्वारा सोने और चांदी की तरह शुद्ध किए जाते हैं। यहूदा के चांदी के 30 सिक्के रविवार के कानून के समय झूठे याजकों के शुद्धिकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। यद्यपि यहूदा क्रूस पर चढ़ाए जाने से ठीक पहले मर गया, फिर भी वो उसी दिन था। यहूदा सन्हेद्रिन का प्रतीक नहीं है, वो ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जिसे मसीह के चेलों में से एक समझा जाता था। मसीह के शिष्य होने के नाते आप यीशु के अभिषेक के भी अनुयायी थे। उनके बपतिस्मा में हुए अभिषेक ने यीशु का नाम बदलकर यीशु मसीह कर दिया, क्योंकि मसीह का अर्थ है अभिषिक्त। तब उनका नाम बदल गया, क्योंकि तब उन्हें बहुतों के साथ एक सप्ताह के लिए वाचा की पुष्टि करनी थी, और वाचा संबंध का एक प्रमुख प्रतीक बदला हुआ नाम है। यीशु का उनके बपतिस्मा के समय सामर्थ्य के साथ अभिषेक हुआ। मसीह का शिष्य होना यह दर्शाता था कि आप उसके बपतिस्मा के भी अनुयायी थे। उसी बपतिस्मा में उन्हें सामर्थ्य के साथ अभिषेक किया गया था। मत्ती 16:18 में पतरस का कथन ईसाई धर्मशास्त्रीय जगत में मसीही अंगीकार के रूप में जाना जाता है। यह धर्मशास्त्रियों और विद्वानों के बीच चर्चा के बड़े विषयों में से एक है। आमतौर पर धर्मशास्त्रियों और विद्वानों की चर्चा किसी ऐसी बात को रेखांकित कर देती है जिसका या तो कोई महत्व नहीं होता या फिर बहुत कम। लेकिन मुद्दा यह है कि मसीहियत यह समझती है कि जब यीशु का अभिषेक हुआ तभी वे मसीहा बने।
उसने उनसे कहा, परंतु तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? और शमौन पतरस ने उत्तर देकर कहा, तू मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती 16:15-16।
पीटर का मूल नाम उसी सत्य को व्यक्त करता था, क्योंकि साइमन बारजोना का अर्थ है जो कबूतर का संदेश सुनता है, और यही उसके बपतिस्मे का संदेश था। उसका बपतिस्मा 9 अगस्त के साथ मेल खाता है, और यहूदा उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने किसी समय 9 अगस्त की समझ का दावा किया पर मार्ग में भटक जाते हैं। यहूदा सन्हेद्रिन का प्रतीक नहीं है, क्योंकि वे लाओदीकियाई सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहूदा ने सन्हेद्रिन के लिए गवाही दी, पर सन्हेद्रिन के विद्रोह का प्रतीकवाद यहूदा के विद्रोह से भिन्न है। सन्हेद्रिन का विद्रोह निम्नलिखित स्वप्न में व्यक्त किया गया है।
मैंने अपनी लिखित सामग्री समेट ली और हम अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में हमने ऑरेंज में 2 बैठकें की और हमें इस बात के प्रमाण मिले कि कलीसिया को लाभ और प्रोत्साहन मिला। हमने स्वयं प्रभु की आत्मा से ताजगी का अनुभव किया। उस रात मैंने सपना देखा कि मैं बैटल क्रीक में थी, दरवाजे के बगल वाले कांच से बाहर देख रही थी, और मैंने एक दल को जोड़े जोड़े घर की ओर बढ़ते हुए देखा। वे सख्त और दृढ़ निश्चयी दिख रहे थे। मैं उन्हें भली भली भांति जानती थी और उनका स्वागत करने के लिए बैठक खाने का दरवाज़ा खोलने को मुड़ी, पर सोचा कि एक बार फिर देख लूं। दृश्य बदल चुका था। अब वो दल एक कैथोलिक जुलूस जैसा प्रतीत हो रहा था। एक के हाथ में क्रूस था, दूसरे के हाथ में सरकंडा, और जैसे ही वे पास आए, सरकंडा लिए हुए व्यक्ति ने घर के चारों ओर एक चक्कर लगाया और 3 बार कहा, ये घर निषिद्ध ठहराया गया है, सामान जब्त किया जाए, इन्होंने हमारे पवित्र संघ के विरुद्ध बोला है। मैं दहशत से जकड़ गई और घर के भीतर दौड़ती हुई उत्तरी दरवाजे से बाहर निकली और अपने को एक दल के बीच पाया, जिनमें से कुछ को मैं जानती थी, पर धोखा दिए जाने के डर से मैं उनसे एक शब्द भी नहीं बोल सकी। मैंने ऐसा एकांत स्थान खोजने की कोशिश की जहां मैं रो और प्रार्थना कर सकूं, बिना इस डर के कि जिधर भी मुड़ूं वहीं उत्सुक जिज्ञासु आंखों से सामना हो जाए। मैं बार बार दोहराती हड़ी, काश मैं इसे समझ पाती, काश वे मुझे बता दें कि मैंने क्या कहा है या क्या किया है। जब मैंने देखा कि हमारे सामान को जब्त किया जा रहा है तो मैं बहुत रोई और बहुत प्रार्थना की। मैंने अपने आसपास के लोगों की नज़रों में मेरे प्रति सहानुभूति या दया पढ़ने की कोशिश की और कई के चेहरे मोरे पर गौर किया, जिनके बारे में मुझे लगा कि यदि उन्हें ये डर न होता कि उन्हें दूसरे देख लेंगे तो वे मुझसे बात करते और मुझे ढाढ़स बंधाते। मैंने भीड़ से निकल भागने का एक प्रयास किया, पर जब देखा कि मुझ पर निगरानी रखी जा रही है तो मैंने अपने इरादे छिपा लिए। मैं जोर से रोने लगी और कहने लगी, काश वे मुझे बता देते कि मैंने क्या किया है या क्या कहा है। मेरे पति, जो उसी कमरे में एक बिस्तर पर सो रहे थे, ने मेरा जोर से रोना सुना और मुझे जगा दिया। मेरा तकिया आंसुओं से भीग गया था और मुझ पर उदासी की गहरी छाया थी। गवाहियां खंड 1 5:7-7, 5:18।
ये सिद्धांत लागू करने पर कि भविष्य वक्ता जिन दिनों में वे जीवित थे उनकी अपेक्षा अधिकतर अंतिम दिनों के विषय में बोलते हैं, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के नेताओं के सामने एक बहुत गंभीर प्रश्न उठता है। सिस्टर व्हाइट ने अपनी रचनाएं एकत्र की और बैटल क्रीक लौटने की यात्रा प्रारंभ की। तब बैटल क्रीक कार्य का केंद्र था, जैसे आज टाकोमा पार्क है या मसीह के दिनों में यरूशलेम था। अपनी रचनाओं के संबंध में चल रहे संघर्ष को प्रस्तुत करने के बाद उसने यात्रा के लिए अपनी रचनाएं समेटी। उसके स्वप्न का संदर्भ उसकी रचनाओं के बारे में है। ये संघर्ष राइट नगर में हुआ।
जब हम राइट में थे तब हमने अंक 11 के लिए मेरी पांडुलिपि प्रकाशन कार्यालय को भेज दी थी और बैठकों से बाहर रहते हुए मैं लगभग हर क्षण का उपयोग अंक 12 के लिए सामग्री लिखने में कर रही थी। राइट में कलीसिया के लिए कार्य करते हुए मेरी शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियां बुरी तरह से खर्च हो चुकी थीं। मुझे लगा कि मुझे विश्राम मिलना चाहिए, परंतु राहत का कोई अवसर दिखाई नहीं देता था। मैं सप्ताह में कई बार लोगों को संबोधित करती थी और व्यक्तिगत गवाहियों के कई पृष्ठ लिखती थी। आत्माओं का बोझ मुझ पर था और जिम्मेदारियां मुझे इतनी भारी लगती थीं कि मैं हर रात केवल कुछ ही घंटों की नींद ले पाती थी। बोलने और लिखने के कार्य में इस प्रकार परिश्रम करते हुए मुझे बैटल क्रीक से हतोत्साहजनक प्रकृति के पत्र प्राप्त हुए। उन्हें पढ़ते समय मेरे मन में अवर्णनीय अवसाद छा गया, जो मानसिक पीड़ा तक जा पहुंचा, और थोड़े समय के लिए मेरी जीवन शक्तियां मानो लकवाग्रस्त हो गईं। 3 रातों तक मुझे नाम मात्र भी नींद नहीं आई। मेरे विचार व्याकुल और उलझे हुए थे। देखे मैंने अपनी भावनाएं अपने पति और उस सहानुभूतिशील परिवार से जिसके साथ हम रह रहे थे यथासंभव छिपाए रखीं। सुबह और शाम की आराधना में परिवार के साथ सम्मिलित होते हुए मैं अपना भार महान भार वहनकर्ता पर रखने का प्रयास करती रही। फिर भी मेरे परिश्रम या मन के बोझ के बारे में किसी को पता न था, पर मेरी विनतियां संताप से मथते हुए हृदय से निकलती थीं और अनियंत्रित शोक के कारण मेरी प्रार्थनाएं टूटी फूटी और असंबद्ध थीं। रक्त मेरे मस्तिष्क की ओर दौड़ पड़ता, जिससे मैं अक्सर लड़खड़ा जाती और लगभग गिर पड़ती। मुझे अक्सर नाक से खून बहने लगता, विशेषकर लिखने का प्रयास करने के बाद। मुझे अपना लेखन एक ओर रख देना पड़ा, पर चिंता और जिम्मेदारी का बोझ मैं उतार नहीं सकी, क्योंकि मुझे ये एहसास था कि मेरे पास दूसरों के लिए गवाहियां पर जिन्हें मैं उन्हें प्रस्तुत करने में असमर्थ थी। मुझे एक और पत्र मिला जिसमें ये सूचित किया गया कि नंबर 11 का प्रकाशन तब तक स्थगित करना उचित समझा गया जब तक मैं स्वास्थ्य संस्थान के संबंध में मुझे जो दिखाया गया था उसे लिख न दूं, क्योंकि उस उपक्रम के प्रभारी साधनों की अत्यंत कमी में थे और भाइयों को प्रेरित करने के लिए मेरी गवाही के प्रभाव की आवश्यकता थी। तब मैंने संस्थान के संबंध में मुझे जो दिखाया गया था उसका एक भाग लिख दिया, परंतु मस्तिष्क में रक्त के दबाव के कारण पूरा विषय प्रस्तुत करना संभव न हुआ। यदि मुझे अनुमान होता कि नंबर 12 इतनी देर तक विलंबित होगा तो नंबर 11 में निहित वो अंश किसी भी असू से बीजा नहीं गया होता।
मेरा ये अनुमान था कि कुछ दिन विश्राम के बाद फिर से लेखन आरंभ करना संभव होगा, परंतु बड़े दुख के साथ मैंने पाया कि मेरे मस्तिष्क की अवस्था के कारण लिखना मेरे लिए असंभव था। सामान्य हो या व्यक्तिगत, गवाही पत्र लिखने का विचार छोड़ दिया गया और उन्हें न लिख पाने के कारण मुझे निरंतर कष्ट होता रहा।
इन परिस्थितियों में ये निर्णय लिया गया कि हम बैटल क्रीक लौट जाएं और जब तक सड़कें की चढ़ से भरी और उखड़ी पुखड़ी हालत में रहें वहां ठहरें और मैं वहीं संख्या 12 पूरा कर दूं। मेरे पति बैटल क्रीक में अपने भाइयों से मिलने, उनसे बात करने और उस कार्य में उनके साथ आनंदित होने के लिए बहुत उत्सुक थे जो परमेश्वर उनके लिए कर रहा था। मैंने अपनी रचनाएं समेट ली और हम अपनी यात्रा पर निकल पड़े। टेस्टिमोनीज खंड 1 576-577।
अंत के दिनों में सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया का नेतृत्व, जिसे बैरो क्रीक और वे जिन्हें वो बली भांति जानती थी के रूप में दर्शाया गया था, एक कैथोलिक जुलूस में बदल गया। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया का नेतृत्व एक कैथोलिक जुलूस में बदल गया। स्वप्न में वे दो दो करके आए, एक के पास सरकंडा, दूसरे के पास क्रूस। उन्होंने घर के चारों ओर एक घेरा खींचा और तीन बार घोषणा की, ये घर निषिद्ध घोषित है, संपत्ति जब्त की जानी चाहिए। उन्होंने हमारे पवित्र धर्म संघ के विरुद्ध बोला है। घर में कौन सी संपत्ति थी जिसे बैरो क्रीक के कैथोलिक नेताओं ने जब्त किया? कैथोलिक कलीसिया के किस पवित्र धर्म संघ के विरुद्ध बोला गया था? और भी सीधे शब्दों में प्रश्न ये हो सकता है, इंक्विजिशन में कैथोलिक धर्म के किस धर्म संघ ने नेतृत्व किया? इंक्विजिशन की शुरुआत डोमिनिकन धर्म संघ से हुई थी, जेसुइटों के इतिहास में आने से पहले, लेकिन जब वे शामिल हुए तो वे क्रूरता और रक्तपात के प्रमुख प्रवर्तक बन गए।
पूरे ईसाई जगत में प्रोटेस्टेंटवाद पर दुर्जेय देशों का खतरा मंडरा रहा था। धर्म सुधार की प्रारंभिक विजयें बीत जाने के बाद रोम ने उसके संपूर्ण विनाश की आशा से नई शक्तियां जुटाईं। इसी समय जेसुइट आदेश की स्थापना हुई। पापसे के सभी समर्थकों में सबसे क्रूर, नीतिहीन और सबसे शक्तिशाली, सांसारिक बंधनों और मानवीय हितों से कटे हुए प्राकृतिक स्नेह के दावों के प्रति मृत, विवेक और अंतरात्मा पूरी तरह मौनों, वे अपने आदेश के नियम और बंधन के सिवा कोई नियम, कोई बंधन नहीं जानते थे और उसकी शक्ति का विस्तार करने के अलावा उनका कोई कर्तव्य नहीं था। मसीह के सुसमाचार ने उसके अनुयायियों को इस योग्य बना दिया था कि वे खतरे का सामना करें और दुख सहें, सर्दी, भूख, श्रम और गरीबी से बेखौफ रहते हुए यातना यंत्र, कालकोठी और दंड खूंटे के सामने भी सत्य का ध्वज ऊंचा रखें। इन शक्तियों का मुकाबला करने के लिए जेसुइटवाद ने अपने अनुयायियों में ऐसा उन्माद भरा जिसने उन्हें ऐसे ही खतरों को सहने योग्य बनाया और सत्य की शक्ति के विरुद्ध छल कपट के सभी हथियारों से प्रतिरोध करने के लिए तैयार किया। उनके लिए कोई अपराध इतना बड़ा नहीं था जिसे वे न कर सकें, कोई छल इतना नीच नहीं था जिसे वे न अपनाएं, कोई वेश इतना कठिन नहीं था जिसे वे धारण न कर सकें। शाश्वत दरिद्रता और विनम्रता की प्रतिज्ञा लेने पर भी उनका सुनियोजित उद्देश्य धन और शक्ति सुरक्षित करना, प्रोटेस्टेंटवाद के उन्मूलन के लिए स्वयं को समर्पित रखना और पापसी के आधिपत्य की पुनर्स्थापना करना था। जब वे अपने संघ के सदस्य के रूप में प्रकट होते थे, वे पवित्रता का वेश धारण करते, कारागारों और अस्पतालों का दौरा करते, बीमारों और गरीबों की सेवा करते, ये दावा करते कि उन्होंने संसार का त्याग कर दिया है और भलाई करते फिरने वाले यीशु का पवित्र नाम धारण किए रहते थे। परंतु इस निष्कलंक बाहरी रूप के नीचे अक्सर सबसे अपराधपूर्ण और घातक उद्देश्य छिपे रहते थे। उस संघ का एक मौलिक सिद्धांत ये था कि साध्य साधनों को उचित ठहराता है। इस संहिता के अनुसार झूठ, चोरी, झूठी शपथ, हत्या, ये न केवल क्षम्य बल्कि प्रशंसनीय भी थे जब वे कलीसिया के हितों की पूर्ति करते थे। विभिन्न भेष बदलकर जेसुइट राज्य के पदों तक पहुँचे, ऊपर उठकर राजाओं के परामर्शदाता बने और राष्ट्रों की नीतियों को आकार देने लगे।
वे अपने स्वामियों पर जासूसी करने के लिए नौकर भी बन गए। उन्होंने राजकुमारों और कुलीनों के पुत्रों के लिए महाविद्यालय तथा आम जनता के लिए विद्यालय स्थापित किए और प्रोटेस्टेंट माता पिता के बच्चे पोपवादी अनुष्ठानों के पालन में खींच लिए गए। रोमी उपासना की सारी बाहरी आडंबर और तड़क भड़क को मन को भ्रमित करने, चकाचौंध करने और कल्पना को मोहित करने के लिए साधन बनाया गया और इस प्रकार जिन स्वतंत्रताओं के लिए पिताओं ने श्रम किया और रक्त बहाया, उन्हें पुत्रों ने धोखा दे दिया। जेसुइट शीघ्र ही समूचे यूरोप के फैल गए और वे जहां भी गए वहां पोपवाद का पुनरुत्थान हुआ।
उन्हें अधिक शक्ति देने के लिए इन्क्विजिशन को पुनः स्थापित करने वाला एक फरमान जारी किया गया। इसके प्रति सामान्य घृणा के बावजूद कैथोलिक देशों में भी ये भयावह न्यायाधिकरण फिर से पोपवादी शासकों द्वारा स्थापित किया गया और उसकी गुप्त काल कोठरियों में ऐसे अत्याचार दोहराए गए जो दिन के उजाले में भी सहन न किए जा सकें। अनेक देशों में राष्ट्र के सबसे चुनिंदा लोग, सबसे शुद्ध और महान, अत्यंत बौद्धिक और उच्च शिक्षित, धर्मी और समर्पित पादरी, मेहनती और देशभक्त नागरिक, तेजस्वी विद्वान, प्रतिभाशाली कलाकार, कुशल शिल्पी, हजारों हजार या तो मार डाले गए या अन्य देशों में भागने पर मजबूर किए गए। यही वे साधन थे जिनका सहारा रोम ने सुधार आंदोलन के प्रकाश को बुझाने, लोगों से बाइबल छीन लेने और अंधकार युग की अज्ञानता और अंधविश्वास को फिर से स्थापित करने के लिए लिया था। परंतु परमेश्वर के आशीर्वाद और उन महान पुरुषों के परिश्रम से जिन्हें उसने लूथर के पश्चात कार्य संभालने के लिए उठाया था, प्रोटेस्टेंट वाद परास्त नहीं हुआ। उसकी शक्ति का श्रेय राजकुमारों की कृपा या उनके शस्त्रों को नहीं था। सबसे छोटे देश, सबसे साधारण और सबसे कम शक्तिशाली राष्ट्र ही उसके गढ़ बन गए। वो छोटी सी जिनेवा थी जो अपने विनाश का षड्यंत्र रचने वाले शक्तिशाली शत्रुओं के बीच घिरी हुई थी। वो हॉलैंड था जो उत्तरी समुद्र के किनारे अपने रेतीले तटबंधों पर स्पेन के अत्याचार के विरुद्ध जूझ रहा था, जो उस समय राज्यों में सबसे महान और सर्वाधिक समृद्ध था। वो कठोर बंजर स्वीडन था जिसने सुधार आंदोलन के लिए विजय अर्जित की। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 234-235।
कैथोलिक चर्च ने बसो बाइबल को लोगों से छिपाने के लिए जो कुछ वे कर सकते थे सब किया, ये दावा करते हुए कि उनकी मूर्ति पूजक परंपराएं और रीति रिवाज परमेश्वर के वचन से ऊपर है। लाओदीकियाई एडवेंटिज्म के नेता एलन व्हाइट की रचनाओं को लेकर असहमत लोगों को अदालत में नहीं ले जाएंगे, परंतु जो कैथोलिक स्वयं को बैटल क्रीक के नेता बताते हैं वे ऐसा करेंगे। कैथोलिकवाद के पशु का मूल सार ये है कि धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए धर्मनिरपेक्ष शक्ति का उपयोग किया जाए। जब एडवेंटिज्म ने अपनी संस्थाओं का प्रबंधन करने के लिए कानूनी धर्मनिरपेक्ष शक्ति की तलाश की, तब उनके पवित्र आदेश के फल दिखाई देने लगे। स्पेनी इंक्विजिशन के ऑटो द फे आस्था का कार्य समारोहों के संदर्भ में सरकंडा और क्रूस मसीहे के क्रूस पर चढ़ाए जाने से जुड़े प्रतीकात्मक तत्वों के रूप में दिखाई देते हैं। सरकंडा उस नकली राजदंड का संकेत है जो कांटों का ताज पहनाए जाने के दौरान यीशु के हाथ में रखा गया था, जिसे रोमी सैनिक उन्हें मारने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये उपहास, पीड़ा और तिरस्कार का प्रतीक है। ऑटो द फे के जुलूसों में क्रूस प्रमुखता से दिखाई देता था। काले क्रेप में अक्सर ढका हरा क्रूस इंक्विजिशन का प्रतीक था, जिसे कार्यक्रम से एक दिन पहले एक अलग तैयारी जुलूस में ले जाया जाता था और कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शित किया जाता था। ये न्यायाधिकरण की सत्ता का प्रतीक था। संपत्ति की जब्ती से आशय दोष सिद्ध व्यक्ति की संपत्ति को जब्त कर लेने, सील जब्त या निषेध से है, जो न्यायाधिकरण के खर्च पूरे करने और विधर्म को दंडित करने के लिए इंक्विजिशन की एक सामान्य सजा थी। इसे ऑटो द फे के दंडादेशों में सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाता था, जिससे सार्वजनिक अपमान और निवारक प्रभाव पर जोर दिया जाता था। एलन जी व्हाइट की रचनाएं स्पष्ट और निर्णायक रूप से उस नेतृत्व की निंदा करती हैं जो दाख की बारी का गाया जा रहा गीत चुप कराने के प्रयास में उनकी रचनाओं पर प्रतिबंध लगाएगा। पर यह एक अपवित्र व्यवस्था का अंतिम कदम है। ठीक उससे पहले जब वे रविवार कानून के समय अपना चरित्र खुलेआम प्रकट करेंगे, एक कैथोलिक जुलूस सूर्य को प्रणाम करते 25 प्राचीन पुरुषों से मेल खाता है। निम्नलिखित चार अनुच्छेदों में पहला अनुच्छेद अंतिम दिनों में परमेश्वर के अंगीकार किए हुए लोगों को प्रस्तुत करता है। ये खंड स्पष्ट रूप से सिखाता है कि अंतिम दिनों में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट पादरी कलीसियाओं में और खुले में बड़े बड़े समागमों में लोगों पर सप्ताह के पहले दिन का पालन करने की अनिवार्यता पर जोर देंगे।
प्रभु का इन अंतिम दिनों में अपने कहलाने वाले लोगों से विवाद है। इस विवाद में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग नहमाया ने जो मार्ग अपनाया था उसके एकदम विपरीत मार्ग अपनाएंगे। वे न केवल स्वयं सप्त की अनदेखी और तिरस्कार करेंगे बल्कि रीति रिवाज और परंपरा के कूड़े कचरे के नीचे उसे दबाकर दूसरों को भी उसे मानने से रोकने का प्रयत्न करेंगे। कलीसियाओं में और खुले मैदानों में होने वाली बड़ी सभाओं में उपदेशक लोगों के सामने सप्ताह के पहले दिन का पालन करने की आवश्यकता पर जोर देंगे। समुद्र और भूमि पर विपत्तियां हैं और ये विपत्तियां बढ़ेंगी, एक के पीछे एक आपदा आती जाएगी और अंतकरण पूर्वक सप्त का पालन करने वालों का छोटा सा दल इस रूप में दिखाया जाएगा कि वे रविवार की अनदेखी करके संसार पर परमेश्वर का कोप ले आ रहे हैं।
ये स्पष्ट रूप से सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट्स को परमेश्वर के कथित लोग के रूप में पहचानता है जो रविवार पालन को बढ़ावा देंगे और ये भी कि वे आउट विवेकनिष्ठ सप्त पालकों के छोटे से समूह को इंगित करेंगे। अगले अनुच्छेद में वो इस बात पर जोर देती है कि पूर्व युगों का उत्पीड़न फिर दोहराया जाएगा। पिछला अनुच्छेद इस पर समाप्त हुआ कि उसने परमेश्वर के कथित लोग की पहचान उन लोगों के विपरीत रूप में की जिन्हें वो विवेकनिष्ठ सप्त पालक कहती है। इसके बाद वो भूतकाल के इतिहास का उल्लेख करती है और चेतावनी देती है कि वे इतिहास अंतिम दिनों में फिर दोहराए जाएंगे। वो बहुत स्पष्ट है।
शैतान इस असत्य का प्रचार करता है ताकि वो संसार को अपने वश में कर सके। मनुष्यों को भ्रांतियों को स्वीकार करने के लिए विवश करना उसकी योजना है। वो सभी मिथ्या धर्मों के प्रचार प्रसार में सक्रिय भाग लेता है और गलत सिद्धांतों को थोपने के अपने प्रयासों में किसी भी हद तक जाने से नहीं चूकेगा। धार्मिक जोश की आड़ में उसकी आत्मा से प्रभावित मनुष्यों को अपने सहमनुष्यों के लिए सबसे क्रूर यातनाएं ईजाद की हैं और उन पर सबसे भयानक कष्ट ढाए हैं। शैतान और उसके सहयोगियों में आज भी वही प्रवृत्ति है और अतीत का इतिहास हमारे समय में फिर दोहराया जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बुराई को अंजाम देने के लिए अपना मन और अपनी इच्छा दृढ़ कर ली है। अपने हृदय की अंधेरी गहराइयों में उन्होंने तय कर लिया है कि वे कौन कौन से अपराध करेंगे। ये लोग स्वयं भ्रमित हैं। उन्होंने परमेश्वर के धर्म के महान नियम को ठुकरा दिया है और उसकी जगह अपना एक मानदंड खड़ा कर लिया है और अपने आप को इसी मानदंड से तुलना करके वे स्वयं को पवित्र ठहराते हैं। प्रभु उन्हें ये प्रकट करने की अनुमति देगा कि उनके हृदय में क्या है और जो स्वामी उन्हें नियंत्रित करता है उसकी आत्मा के अनुसार आचरण करने देगा। वो उन्हें उसकी व्यवस्था के प्रति अपनी घृणा को उन लोगों के साथ अपने व्यवहार में दिखाने देगा जो उसकी मांगों के प्रति निष्ठावान हैं। वे उसी धार्मिक उन्माद की आत्मा से प्रेरित होंगे जिसने उस भीड़ को उकसाया था जिसने मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। कलीसिया और राज्य उसी भ्रष्ट संगति में एक हो जाएंगे। आज की कलीसिया ने प्राचीन काल के यहूदियों के पदचिन्हों का अनुसरण किया है जिन्होंने अपनी परंपराओं के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को परे रख दिया था। उसने विधि बदल दी है, अनंत वाचा को तोड़ दिया है और अब भी जैसे तब अहंकार, अविश्वास और धर्म त्याग ही परिणाम है। उसकी वास्तविक अवस्था मूसा के गीत के इन शब्दों में प्रकट की गई है। उन्होंने अपने आप को भ्रष्ट कर लिया है। उनका कलंक उसके बच्चों का कलंक नहीं है। वे कुटिल और टेढ़ी पीढ़ी हैं। हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम इस प्रकार प्रभु का प्रतिदान देते हो? क्या वो तुम्हारा पिता नहीं है जिसने तुम्हें खरीदा है? क्या उसने तुम्हें बनाया और स्थापित नहीं किया? रिव्यू एंड हेरल्ड, 18 मार्च 1884।
स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी में एक के बाद एक ऐसे अनुच्छेद हैं जो परमेश्वर के विश्वास योगियों पर होने वाले अंतिम दिनों के उत्पीड़न की पहचान कराते हैं और जिस आज की कलीसिया की वो पहचान करती है वो सामान्य रूप से मसीही धर्म नहीं है। वो वही कलीसिया है जिसे वो बार बार यहूदी कलीसिया द्वारा प्रतिरूपित बताती है। उसकी रचनाओं में वे स्पष्ट अनुच्छेद ही सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया को बहन व्हाइट की रचनाओं पर पाबंदियां लगाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसा कि उसके स्वप्न में बहुत उपयुक्त रूप से दिखाया गया है। उसकी रचनाओं के विरुद्ध उनके कार्य, जो उसके घर के वे प्रत्यक्ष सामान थे, जिन्हें बैटल क्रीक के वे नेता, जो कैथोलिकवाद के एक पवित्र आदेश में बदल गए, निषिद्ध करने वाले थे, उसकी रचनाओं पर उनका हमला यिर्मयाह की रचनाओं पर हुए हमले से भी प्रदर्शित किया गया है। एलेटूरिस व्हाइट का स्वप्न यिर्मयाह की रचनाओं के जलाए जाने का दूसरा साक्षी है।
लाओदीकियाई एडवेंटवाद की तीसरी पीढ़ी में समझौता प्रमुख विषय था। तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व पिर्गमुस की कलीसिया द्वारा किया गया है। 1919 में W.W. प्रेस्कॉट की द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट शीर्षक पुस्तक के प्रकाशन से लेकर 1957 में क्वेश्चंस ऑन डॉक्ट्रिन के प्रकाशन तक का काल एक संक्रमण काल को चिन्हित करता है, जिसका प्रतिनिधित्व एक अल्फा प्रकाशन द्वारा आरंभ होकर एक ओमेगा प्रकाशन पर समाप्त होने से होता है। पहली पुस्तक W.W. प्रेस्कॉट द्वारा यहूदा के गोत्र के सिंह के अस्वीकार को और उसके स्थान पर मसीह के धर्म त्यागी प्रोटेस्टेंट दृष्टिकोण को स्वीकार करने को प्रस्तुत करती थी। प्रेस्कॉट की पुस्तक, जिसका उचित शीर्षक द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट था, मिलेरवादी भिष्यद्वाणी संदेश को खोखला कर गई और यीशु की वो रिक्त परिभाषा छोड़ गई जिसकी आराधना कैथोलिकवाद और धर्म त्यागी प्रोटेस्टेंटवाद करते हैं। उस पीढ़ी की अंतिम पुस्तक ऐसी पवित्रीकरण और धर्मी ठहराए जाने की परिभाषा प्रस्तुत करती है जो परमेश्वर की व्यवस्था, उसके न्याय और दया को नष्ट कर देती है। प्राचीन इसराइल को परमेश्वर की व्यवस्था के संरक्षक होने का उत्तरदायित्व दिया गया था और एडवेंटवाद को न केवल परमेश्वर की व्यवस्था बल्कि उसके भविष्यद्वाणीमय वचन का भी संरक्षक होना था। 1919 में एक ऐसी पुस्तक आई जिसने परमेश्वर के भविष्यद्वाणीमय वचन की प्रतिरक्षा को अस्वीकार किया और इस प्रकार लाओदीकियाई एडवेंटवाद की तीसरी पीढ़ी का आरंभ चिन्हित किया, जिसका अंत एक ऐसी पुस्तक के साथ हुआ जिसने परमेश्वर की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया।
यदि आप अपने हृदय की हट को पोषित करें और घमंड व आत्मधार्मिकता के कारण अपने दोषों को स्वीकार न करें, तो आप शैतान के प्रलोभनों के वश में छोड़ दिए जाएंगे। यदि जब प्रभु आपकी भूलें प्रकट करे, तब भी आप न तो पश्चाताप करें और न स्वीकारोक्ति करें, तो उसकी व्यवस्था आपको उसी पाठ से बार बार गुजारेगी। आप वैसी ही प्रकृति की गलतियां करते रहेंगे, बुद्धि की कमी बनी रहेगी और पाप को धार्मिकता कहेंगे और धार्मिकता को पाप। इन अंतिम दिनों में जो अनेक प्रकार के छल कपट व्याप्त होंगे, वे आपको घेर लेंगे और आप अपना नेता बदल देंगे और आपको ये भी पता नहीं होगा कि आपने ऐसा कर दिया है। रिव्यू एन हेरोल्ड, 16 दिसंबर 1890।
परगामोस तीसरी कलीसिया तियातेरा पापल कलीसिया की ओर ले गई, जो चौथी पीढ़ी है जब वे 25 पुरुष तियातेरा के अधिकार के प्रतीक के सामने झुकते हैं।
प्रारंभिक उपनिवेशियों द्वारा अपनाया गया ये नियम कि केवल कलीसिया के सदस्य ही मतदान करें या नागरिक सरकार में पद धारण करें, अत्यंत हानिकारक परिणामों तक ले गया। इस उपाय को राज्य की शुद्धता बनाए रखने के साधन के रूप में स्वीकार किया गया था, परंतु इसका परिणाम कलीसिया के भ्रष्टाचार के रूप में निकला। जब धर्म का अंगीकार मताधिकार और पद धारण करने की शर्त बन गया, तो कई लोग केवल सांसारिक नीति की प्रेरणाओं से प्रेरित होकर बिना हृदय परिवर्तन के ही कलीसिया से जुड़ गए। इस प्रकार कलीसियाएं काफी हद तक उन लोगों से बनने लगी जिनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था, और पादरी वर्ग में भी ऐसे लोग थे जो न केवल सिद्धांतगत त्रुटियां रखते थे बल्कि पवित्र आत्मा की नवीन करने वाली शक्ति से भी अनभिज्ञ थे। इस प्रकार फिर से वे बुरे परिणाम प्रमाणित हुए जो कलीसिया के इतिहास में कॉन्स्टेंटाइन के दिनों से लेकर आज तक बार बार देखे गए हैं, अर्थात राज्य की सहायता से कलीसिया को मजबूत करने का प्रयास करना, उसके सुसमाचार के समर्थन में लौकिक सत्ता से अपील करना, जबकि उसी ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, यूहन्ना 18:36। कलीसिया का राज्य के साथ गठजोड़, जग चाहे उसकी मात्रा कितनी ही मामूली क्यों न हो, देखने में तो संसार को कलीसिया के निकट लाता हुआ प्रतीत होता है, पर वास्तविकता में वो कलीसिया को संसार के और निकट ले आता है। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 297।
कलीसिया और राज्य का संघ, चाहे उसका स्तर कितना ही अल्प क्यों न हो, जबकि ये प्रतीत हो सकता है कि इससे संसार कलीसिया के निकट आता है, वास्तविकता में ये केवल कलीसिया को संसार के अधिक निकट लाता है। 18 मई 1977 को बर्ट बी बीच कलीसिया के उत्तरी यूरोप पश्चिम अफ्रीका प्रभाग में एक निदेशक और अंतर चर्च संबंधों में संलग्न ने रोम में एक सामूहिक भेंट के दौरान मसीह विरोधी पोप पॉल शिक्टपम को एक स्वर्ण मढ़ित पदक भेंट किया। ये विश्व धर्म संप्रदाय परिवारों के सचिवों के सम्मेलन की बैठक का एक हिस्सा था। इस घटना की रिपोर्ट एडवेंटिस्ट रिव्यू 11 अगस्त 1970 में प्रकाशित हुई और रिलीजियस न्यूज सर्विस ने इसे इस रूप में उल्लेखित किया कि पहली बार किसी आधिकारिक एसडीए प्रतिनिधि ने किसी पोप से मुलाकात की।
प्रभु ने उन पर श्राप घोषित किया है जो पवित्र शास्त्र में से कुछ घटाते या उसमें कुछ जोड़ते हैं। महान मैं हूं ने ये निर्धारित किया है कि विश्वास और सिद्धांत का मानदंड क्या होगा और उसने ये ठहराया है कि बाइबल घर घर की पुस्तक हो। जो कलीसिया परमेश्वर के वचन को थामे रहती है वो रोम से ऐसे पृथक है कि मेल मिलाप संभव नहीं। प्रोटेस्टेंट कभी इसी प्रकार इस महाधर्म त्यागी कलीसिया से अलग थे, परंतु वे उसके और निकट आ गए हैं और अब भी रोम की कलीसिया से मेल मिलाप के मार्ग पर हैं। रोम कभी नहीं बदलता, उसके सिद्धांतों में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आया है। उसने अपने और प्रोटेस्टेंटों के बीच की खाई को कम नहीं किया, सारा आगे बढ़ना उन्होंने ही किया है। लेकिन ये आज के प्रोटेस्टेंटवाद के बारे में क्या कहता है? बाइबल की सच्चाई का अस्वीकार ही मनुष्यों को अविश्वास के निकट ले जाता है। जो कलीसिया अपने और पापायत्व के बीच की दूरी घटाती है वही पतनशील कलीसिया है। लूथर, क्रैनमर, रिडली, हूपर जैसी आत्माएं और वे हजारों उदात्त पुरुष जो सत्य के लिए शहीद हुए वही सच्चे प्रोटेस्टेंट हैं। वे सत्य के विश्वास योग्य प्रहरी बनकर खड़े रहे ये घोषित करते हुए कि प्रोटेस्टेंटवाद का रोमनवाद से कोई मेल संभव नहीं, वरन उसे पापाई सिद्धांतों से उतना ही पृथक रहना चाहिए जितना पूर्व पश्चिम से है। ऐसे सत्य के पक्षधर पाप के मनुष्य के साथ उतना ही कम सामंजस्य बिठा सकते थे जितना मसीह और उसके प्रेरित कर सकते थे। प्राचीन युगों में धर्मी जनों को लगता था कि रोम से मिलाप असंभव है और यद्यपि इस भ्रमपूर्ण तंत्र का विरोध उन्होंने धन संपत्ति और प्राणों के जोखिम पर बनाए रखा, फिर भी उनके पास अपने अलगाव को बनाए रखने का साहस था और उन्होंने सत्य के लिए दृढ़तापूर्वक संघर्ष किया। बाइबल का सत्य उनके लिए धन मान यहाँ तक कि जीवन से भी अधिक प्रिय था। वे ये सह नहीं सकते थे कि सत्य अंधविश्वास और झूठे कुतर्कों के ढेर के नीचे दफन कर दिया जाए। उन्होंने परमेश्वर के वचन को हाथ में लिया और लोगों के सामने सत्य का ध्वज उठा दिया, साहसपूर्वक वही घोषित किया जो बाइबल का लगन से अन्वेषण करने के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें प्रकट किया था। वे परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा के कारण अत्यंत क्रूर मृत्यु मरे, पर अपने लहू से उन्होंने हमारे लिए वे स्वतंत्रताएं और विशेषाधिकार खरीद लिए जिन्हें आज बहुत से लोग जो अपने को प्रोटेस्टेंट कहते हैं बुराई की शक्ति के हाथों आसानी से गंवा रहे हैं। पर क्या हम इन बड़ी कीमत देकर प्राप्त विशेषाधिकारों को छोड़ देंगे? क्या हम स्वर्ग के परमेश्वर का अपमान करेंगे और जब वो हमें रोमनवादी जुए से मुक्त कर चुका है फिर से अपने आप को इस मसीह विरोधी शक्ति की दास्ता में डाल देंगे? क्या हम अपने अधब पतन को इस पर हस्ताक्षर करके सिद्ध करेंगे कि हम अपनी धार्मिक स्वतंत्रता अपने स्वयं के विवेक के निर्देशों के अनुसार परमेश्वर की उपासना करने के अपने अधिकार को त्याग रहे हैं? लूथर की वो आवाज़ जो पर्वतों और घाटियों में गूंजी, जिसने यूरोप को भूकंप के समान हिला दिया, उसने यीशु के उदात्त प्रेरितों की एक सेना को बुला खड़ा किया और जिस सत्य का वे प्रचार करते थे उसे चिताओं, यातनाओं, कारागारों, मृत्यु से भी चुक नहीं कराया जा सका। और आज भी शहीदों की उस उदात्त सेना की आवाज़ें हमें बताती हैं कि रोमी सत्ता ही अंत के दिनों का भविष्यवाणी किया हुआ धर्म त्याग है। वो अधर्म का रहस्य जिसे पौलुस ने अपने ही दिनों में काम करना आरंभ होता देखा था। रोमन कैथोलिकवाद तेजी से पैर जमा रहा है, पोपवाद बढ़ रहा है और जिन्होंने अपने कान सत्य सुनने से फेर लिए हैं वे उसकी भ्रामक दंतकथाएँ सुन रहे हैं। पोप संबंधित प्रार्थनालय, कॉलेज, कन्वेंट और मठ बढ़ते जा रहे हैं और प्रोटेस्टेंट संसार सोया हुआ प्रतीत होता है।
प्रोटेस्टेंट वो भेद चिन्ह खोते जा रहे हैं जो उन्हें संसार से अलग करता था, और वे अपने और रोमी सत्ता के बीच की दूरी घटा रहे हैं। उन्होंने सत्य सुनने से अपने कान फेर लिए हैं। वे उस ज्योति को स्वीकार करने की इच्छुक नहीं रहे जो परमेश्वर ने उनके पथ पर बिखेरी, और इसलिए वे अंधकार में जा रहे हैं। वे इस धारणा का तिरस्कार करते हैं कि रोमनवादियों और उनके साथ जुड़ने वालों की ओर से अतीत का क्रूर सताव फिर से जाग उठेगा। वे इस तथ्य को नहीं मानते कि परमेश्वर का वचन इस बात की पूर्ण भविष्यवाणी करता है कि ऐसा फिर से होगा, और ये स्वीकार नहीं करेंगे कि अंत के दिनों में परमेश्वर की प्रजा सताव सहेगी। यद्यपि बाइबल कहती है, अजगर उस स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसके वंश के बचे हुए लोगों से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह की गवाही रखते हैं लड़ने को चला गया। पोपवाद मानव स्वभाव का धर्म है, और मानव समुदाय का बड़ा भाग उस सिद्धांत को प्रेम करता है जो उन्हें पाप करने की अनुमति देता है और फिर भी उसके परिणामों से उन्हें मुक्त कर देता है। लोगों के पास किसी न किसी रूप में धर्म होना ही है, और ये धर्म जो मनुष्य की गढ़ी हुई रचना होकर भी दैवी अधिकार का दावा करता है, शारीरिक मनोवृत्ति को भाता है। जो मनुष्य अपने को बुद्धिमान और समझदार समझते हैं, वे घमंड में धर्म के मानक अर्थात 10 आज्ञाएं से मुंह मोड़ लेते हैं, और ये नहीं समझते कि परमेश्वर के मार्गों की जांच पड़ताल करना उनकी गरिमा के अनुकूल है। इसलिए वे झूठे मार्गों पर निषिद्ध पथों में निकल पड़ते हैं, पोप के आदर्श पर न कि यीशु मसीह के। वे आत्मनिष्भर और आत्ममुग्ध हो जाते हैं। उन्हें ऐसे धर्म का रूप चाहिए जिसमें आध्यात्मिकता और आत्मत्याग की मांग सबसे कम हो, और क्योंकि अपवित्र मानवीय बुद्धि उन्हें पोपवाद से घृणा करना नहीं सिखाती, वे स्वाभाविक ही उसके विधान और शिक्षाओं की ओर खिंचते चले जाते हैं। वे प्रभु के मार्गों में चलना नहीं चाहते। वे अपने को इतना अधिक प्रबुद्ध समझते हैं कि प्रार्थना पूर्वक और नम्रता से उसके वचन की समझ के साथ परमेश्वर को खोजें। प्रभु के मार्गों को जानने की परवाह न करने के कारण उनके मन भ्रमों के लिए एकदम खुले रहते हैं, और झूठ को स्वीकार करने व उस पर विश्वास करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। सबसे अविवेकपूर्ण, सबसे असंगत असत्य भी जब उन पर सत्य की तरह थोप दिया जाता है तो वे उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। शैतान की छल कपट की उत्कृष्ट कृति पोपवाद है, और जबकि ये सिद्ध हो चुका है कि गहन बौद्धिक अंधकार का एक काल रोमनवाद के अनुकूल था, ये भी सिद्ध होगा कि अत्यधिक बौद्धिक प्रकाश का काल भी उसकी शक्ति के अनुकूल है, क्योंकि मनुष्यों का मन अपनी ही श्रेष्ठता पर केंद्रित है और वे अपने ध्यान में परमेश्वर को बनाए रखना पसंद नहीं करते। रोम अभ्रांतता का दावा करता है, और प्रोटेस्टेंट भी उसी राह पर चल रहे हैं। वे सत्य की खोज करना और प्रकाश से आगे बढ़कर और भी अधिक प्रकाश की ओर जाना नहीं चाहते। वे अपने चारों ओर पूर्वाग्रह की दीवार खड़ी कर लेते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे स्वयं धोखा खाने और दूसरों को धोखा देने के लिए तैयार है। परंतु यद्यपि कलीसियाओं का रवैया हतोत्साहित करने वाला है, फिर भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पास ऐसे लोग हैं जो उसके सत्य के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखेंगे, जो बाइबल और केवल बाइबल को अपने विश्वास और सिद्धांत का नियम बनाएंगे, जो मानक को ऊंचा उठाएंगे और उस पताका को ऊंचा थामेंगे जिस पर ये अंकित है, परमेश्वर की आज्ञाएं और यीशु का विश्वास। वे शुद्ध सुसमाचार को महत्व देंगे और बाइबल को अपने विश्वास और सिद्धांत की नींव बनाएंगे। ऐसे समय में जब लोग सेनाओं के प्रभु की व्यवस्था को एक ओर डाल रहे हैं, दाऊद की ये प्रार्थना उपयुक्त है। हे प्रभु, अब तेरे काम करने का समय है, क्योंकि उन्होंने तेरी व्यवस्था को अमान्य कर दिया है। हम ऐसे समय के निकट आ रहे हैं जब परमेश्वर की व्यवस्था पर लगभग सर्वत्र तिरस्कार उंडेला जाएगा, और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले लोगों को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। परंतु क्या वे यहोवा की व्यवस्था के प्रति अपना सम्मान इसलिए खो देंगे कि अन्य लोग उसके बाध्यकारी दावों को देखते और समझते नहीं? लोग जितना अधिक उसे एक ओर फेंकते और उस पर अनादर व तिरस्कार उंडेलते जाएं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले लोग दाऊद की भांति उतनी ही अधिक परमेश्वर की व्यवस्था का आदर करें।
साइंस ऑफ द टाइम्स 18 फरवरी 1894
में, जो कि वो समय था जब लाओदिकीय सेवेंथ डे चर्च के एक नेता द्वारा मसीह विरोधी को स्वर्ण पदक दिए जाने से 2 वर्ष पहले सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया, EEOC versus Pacific Press Publishing Association, case number C-74-2025-CBR in the U.S. District Court for the Northern District of California, जहां Equal Employment Opportunity Commission ने चर्च के प्रकाशन गृह के विरुद्ध 2 महिला कर्मचारियों, मेरा के सिल्वर, जो मुकदमा दायर होने तक वहां से जा चुकी एक पूर्व संपादक थीं, और लोर्ना टोबलर की ओर से वेतन और लाभ में लिंग आधारित भेदभाव के आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया। चर्च ने अपने तौर तरीकों का बचाव आंशिक रूप से धार्मिक छूटों का हवाला देकर और अपनी शासन संरचना पर चर्चा करते हुए किया। शुक्र फरवरी 1976 की दिनांकित एक शपथ पत्र में, जो न्यायालय में प्रस्तुत प्रतिरक्षा ज्ञापन का एक भाग था, नील सी विल्सन, जो उस समय चर्च के नॉर्थ अमेरिकन डिवीजन के अध्यक्ष थे और बाद में 1979-1990 तक जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रहे, ने रोमन कैथोलिक धर्म के संबंध में चर्च के ऐतिहासिक दृष्टिकोणों पर चर्चा की। ये बयान उस संदर्भ में दिया गया था जिसमें पापल प्रणाली जैसी हायरार्की रखने वाले के रूप में चर्च के चित्रणों का प्रतिवाद किया जा रहा था। संबंधित पूर्ण उद्धरण इस प्रकार है, यद्यपि यह सत्य है कि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के जीवन में एक ऐसा काल रहा है जब इस संप्रदाय ने स्पष्ट रूप से रोमन कैथोलिक विरोधी दृष्टिकोण अपनाया था और हायरार्की शब्द का उपयोग चर्च शासन की पापल प्रणाली के लिए निंदात्मक अर्थ में किया जाता था, तो भी चर्च की ओर से वह रवैया इस सदी के प्रारंभिक भाग और पिछली सदी के उत्तरार्ध में रूढ़ीवादी प्रोटेस्टेंट संप्रदायों में फैले व्यापक पोप विरोध की एक अभिव्यक्ति भर था। और जहां तक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च का संबंध है, अब उसे इतिहास के कूड़े के ढेर पर डाल दिया गया है। ये चर्च की पारंपरिक भविष्यवाणी संबंधी व्याख्या से हटने का संकेत देता है, जिसने प्रकाशित वाक्य में पोप सत्ता को पशु या मसीह विरोधी के रूप में पहचाना था। चर्च के भीतर और बाहर दिखे आलोचकों ने इसे आधुनिक अंतर सांप्रदायिक सत्यता या कानूनी बचाव के अनुरूप होने के लिए उस कैथोलिक विरोधी रुख को कमतर आंकने या त्यागने के रूप में समझा है। विल्सन ने 1985 में चर्च के विभिन्न डिवीजनों के अध्यक्षों को कार्डिनल बताया जब उन्होंने कहा, सुदूर पूर्व के देशों से कोई भी कार्डिनल नहीं है, जबकि अफ्रीका से संभवतः 2 कार्डिनल होंगे। सिस्टर व्हाइट ने कहा कि जो कलीसिया अपने और पोप के बीच की दूरी कम करती है वो पतनशील कलीसिया है। तीसरी पीढ़ी के समझौते को यहेजकेल अध्याय 8 में तमूज के लिए रोने के रूप में और परगमुस के समझौते द्वारा प्रस्तुत किया गया है। 1863 से 1838 तक की पहली पीढ़ी इफिसुस की कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती थी, एक ऐसी कलीसिया जिसने अपना पहला प्रेम खो दिया था और मिलराइट आंदोलन का पहला प्रेम भविष्यद्वाणी का संदेश था, और उस भविष्यद्वाणी संदेश का पहला अध्याय 7 समय था, जिसे 1863 में एक ओर रख दिया गया था। 8885 से 919 तक का स्मिर्ना और यहेजकेल के गुप्त कक्षों द्वारा प्रतिनिधित्व की गई दूसरी पीढ़ी ने भविष्यवाणी की आत्मा की मृत्यु को देखा जब 1915 में सिस्टर व्हाइट को दफनाया गया। गवाही को पूर्ण करने के लिए 4 पीढ़ियों के और विवरण आवश्यक है, परंतु ये समझना जरूरी है कि क्रमिक विद्रोह को समझे बिना ये पूरी तरह आकलन नहीं किया जा सकता कि धर्मत्यागी लोग एलन व्हाइट की रचनाओं को कैसे प्रतिबंधित कर सकते थे या वे सप्ताह के पहले दिन को कैसे स्वीकार्य के रूप में बढ़ावा दे सकते थे। यहूदा यरूशलेम में इफ्रेम के पियकड़ों के साथ काम करता है जो इस प्रजा पर शासन करते हैं और जो यरूशलेम पर शासन करते हैं और सूर्य को प्रणाम करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व सनहेद्रिन करता है। हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
जो अपने आप को परमेश्वर की संतान बताते हैं, उनके बीच कितनी कम धीरज दिखाई गई है, कितने कटु वचन बोले गए हैं, और जो हमारे विश्वास के नहीं हैं, उनके विरुद्ध कितनी भर्त्सना की गई है। बहुतों ने अन्य कलीसियाओं के लोगों को बड़े पापी समझा था, जबकि प्रभु उन्हें इस प्रकार नहीं मानता।
जो लोग अन्य कलीसियाओं के सदस्यों को इस दृष्टि से देखते हैं, उन्हें परमेश्वर के पराक्रमी हाथ के नीचे अपने आप को दीन करना चाहिए। जिन्हें वे दोषी ठहराते हैं, उन्हें शायद बहुत ही थोड़ा प्रकाश, कम अवसर और विशेष अधिकार मिले हों। यदि उन्हें वो प्रकाश मिला होता जो हमारी कलीसियाओं के बहुत से सदस्यों को मिला है, तो वे कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ते और संसार के सामने अपने विश्वास का उत्तम प्रतिनिधित्व करते। जो अपने प्रकाश का घमंड करते हैं और फिर भी उसमें चलते नहीं, उनके विषय में मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन सूर और सीदोन की दशा तुम्हारी अपेक्षा अधिक सहनीय होगी, और तू कफरनहूम सेवंथ डे एडवेंटिस्ट, जिन्हें बड़ी ज्योति मिली है, जो विशेष अधिकार की दृष्टि से स्वर्ग तक ऊंचा उठाया गया है, अधोलोक में उतारा जाएगा, क्योंकि यदि तेरे बीच जो सामर्थ्य के काम किए गए हैं वे सदोम में किए गए होते तो वो आज तक बना रहता। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन सदोम देश की दशा तुम्हारी अपेक्षा अधिक सहनीय होगी। उसी समय यीशु ने उत्तर दिया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तूने ये बातें ज्ञानियों और समझदारों अपनी ही दृष्टि में से छिपाई और इन्हें बालकों पर प्रकट किया।
और अब क्योंकि तुमने ये सब काम किए हैं, प्रभु कहते हैं, मैं सुबह सुबह उठकर तुमसे बोलता रहा पर तुमने नहीं सुना, और मैंने तुम्हें पुकारा पर तुमने उत्तर नहीं दिया। इसलिए मैं इस घर के साथ वैसा ही करूँगा जो मेरे नाम से कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और उस स्थान के साथ भी जिसे मैंने तुम्हें और तुम्हारे पितरों को दिया, जैसा मैंने शिलोह के साथ किया था। और मैं तुम्हें अपनी दृष्टि से बाहर कर दूंगा, जैसा मैंने तुम्हारे सब भाइयों, यहाँ तक कि इफ्राम की पूरी संतान को निकाल दिया है।
प्रभु ने हमारे बीच अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थाएं स्थापित की हैं, और उन्हें वैसे नहीं चलाया जाना चाहिए जैसे संसार की संस्थाएं चलाई जाती हैं, बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार उन्हें केवल उसकी महिमा पर दृष्टि लगाए हुए इस प्रकार संचालित किया जाना चाहिए कि हर संभव उपाय से नाशमान आत्माएं उद्धार पाएं। परमेश्वर की प्रजा को आत्मा की गवाहियां मिली हैं, फिर भी बहुतों ने ताड़ना, चेतावनियों और परामर्शों पर ध्यान नहीं दिया है।
अब ये सुनो, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, जिनकी आंखें हैं पर देखते नहीं, जिनके कान हैं पर सुनते नहीं, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? प्रभु की ये वाणी है, क्या मेरी उपस्थिति से तुम ना कांपोगे? मैंने समुद्र की सीमा के लिए रेत को सदा के नियम से ठहराया है कि वो उसे पार न कर सके, और चाहे उसकी तरंगे उछलें तो भी वे प्रबल नहीं हो सकती, चाहे वे गरजें तो भी वे उसे पार नहीं कर सकती। परंतु इस प्रजा का हृदय हठधर्मी और विद्रोही है, वे बगावत करके दूर चले गए हैं। वे अपने मन में ये नहीं कहते, अब हम अपने परमेश्वर प्रभु का भय माने, जो अपने समय पर पहली और पिछली दोनों वर्षाएं देता है। वो हमारे लिए कटनी के नियत सप्ताह सुरक्षित रखता है। तुम्हारी अधर्मताओं ने इन बातों को तुमसे दूर कर दिया है, और तुम्हारे पापों ने तुम्हारे लिए अच्छी वस्तुएं रोके रखी हैं। वे अनाथ के मुकदमे का न्याय नहीं करते तो भी वे समृद्ध होते हैं, और दरिद्र के अधिकार का वे न्याय नहीं करते। क्या मैं इन बातों के लिए दंड न दूं? प्रभु की ये वाणी है, क्या ऐसी जाति पर मेरी आत्मा प्रतिशोध न लेगी?
क्या प्रभु को ये कहने के लिए विवश होना पड़ेगा? इस लोगों के लिए तू प्रार्थना न कर, न उनके लिए पुकार या प्रार्थना उठा, न मेरे सामने उनके लिए मध्यस्थता कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। अथा वर्षा की फुहारें रोक दी गई हैं और अंतिम वर्षा नहीं हुई, क्या तू अब से मुझे पुकार करना कहेगा, मेरे पिता, तू मेरी युवावस्था का मार्गदर्शक है? रिव्यू एन हेरल्ड 8 अगस्त 1893।